તારીખ 27/12/1995 શ્રી મધરાજચંદ્ર પત્રાંક 108 પર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ઈડરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 149.
ફિર વહી બાત કે અંતર મેં સુખ હૈ દોબારા પ્રાણી માત્ર સુખ કે પીછે પ્રયાસ કર રહે હૈ ઓર વો ભી બહાર મેં જી ઇસ વિષય મેં સરાસર ભુલા હુઆ હૈ તો કહેતે હૈ કે અંતર મેં સુખ હૈ યે ભૂલને લાયક નહીં હૈ બાર બાર इसलिए कहते हैं कि भूल भी जीव बार बार करता है. जगत में ऐसी कोई पुस्तक या लेख या ऐसा कोई अपरिचित साक्षी तुझे यूं नहीं कह सकता कि ये सुख का मार्ग है अथवा आप ऐसा वर्तन करें अथवा एक ही क्रम से विचार आए इसी से ऐसा वर्तन करें अथवा सबको एक ही क्रम से विचार आए इसी से सूचित होता है कि यहाँ कुछ प्रबल विचारधारा आ रही है. ये सुख का विषय एक जगत की बहुत बड़ी समस्या रही हमेशा के लिए. जगत में बुद्धिमान लोग तो बहुत हैं और यही बुद्धि के कारण से अनेक प्रकार की भौतिक व्यवस्था आज दिखाई देती है. इतनी खोज इतनी ये जो भौतिक सुविधाएं उस विषय में इतना प्रोग्रेस है और उस विषय में लोग उतने आगे बढ़े हुए हैं जो ऑटोमाइजेशन हुआ जितना भी फिर भी सुख का विषय जो है वो समस्या के रूप में हमेशा रहा है. क्यों? कि सुख अंतर में है वो बात के विषय में बिल्कुल विपरीत कॉन्सेप्ट चल रहा है. जो निश्चय है वो बिल्कुल विपरीत चल रहा है. इसलिए सुख के लिए लोग बाहर ढूंढते हैं, सुख मिलता नहीं, सुख तो नहीं मिलता, सुख के बजाय दुख मिलता है. इसलिए कहते हैं कि जगत में ऐसा कोई पुस्तक नहीं, ऐसा कोई लेख नहीं या कोई भी आदमी ऐसा नहीं कह सकता कि सुख का यही मार्ग है. कोई दिखा नहीं सकता क्योंकि खुद ही नहीं जानता, कहां से दिखाएगा. और तुम ऐसा वर्तन करोगे तो तुम सुखी हो जाओगे. आपको सभी को ऐसा करना है तो आप सुखी हो जाएंगे. यही परिस्थिति सूचित करती है कि एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है. गंभीर वहां कोई प्रबल विचारणा रही है इसका मतलब कि बहुत विचारने लायक विषय रहा है. એ બધામાં તારી લાગણી નથી એટલે શું છે કે ઉપર જેટલી વાત કરીને પુરુષાર્થનો જય ન થયો તો નિરાશા સ્મરીશ ને બીજાના દોષ ને તને બંધન છે એમ માનીશ નહીં. તારે નિમિત્તે પણ બીજાને દોષ કરતો ભૂલાવ, તારે દોષે તને બંધન છે, તારો દોષ એટલો કે અન્ય પોતાને માનવું, એ બધામાં તારી લાગણી નથી. એટલે એ બાજુ તારું ઝુકાવ નથી, લગાવ ઝુકાવ નથી. અને એના માટે તે જુદે જુદે સ્થળે તે સુખની કલ્પના કરી છે એમ કેમ. તો એ બી એક જો વાસ્તવિકતા જગતમાં ચાલ રહી હૈ કે સુખ કે લીએ કોઈ કિતાબ મિલતી નહીં, કોઈ લેખ મિલતા નહીં, કોઈ સુખ કે લીએ સહી ઉપાય સહી રાસ્તા બતાને વાલા મિલતા નહીં હૈ, કોઈ ગંભીર પ્રબલ વિચારધારા ઇસકે લીએ કોઈ હોગી હોની ચાહીએ એસા કમ સે કમ સ્વીકાર કરના ચાહીએ કે સુખ કે લીએ કોઈ અનોખી ગંભીર વિચારધારા હોની ચાહીએ. ક્યુકે ઇતને ઇતને જગત મેં બુદ્ધિમાન લોગ હોને પર ભી એ સુખ કી સમસ્યા કા સમાધાન ક્યો નહીં મિલ રહા હૈ. એસા નહીં કહે સકતે કે લોગો મેં બુદ્ધિ નહીં હૈ, બુદ્ધિમાન લોગ બુદ્ધિમાન જગત મેં હૈ નહીં રહે નહીં, એસી તો વાત નહીં કહે સકતે. અચ્છે અચ્છે બુદ્ધિમાન લોગ મૌજૂદ હૈ, ફિર ભી સુખ કે લીએ સમસ્યા રહી. ये सूचित करता है कि कोई प्रबल विचारधारा इस विषय में होनी चाहिए. अब क्या होता है कि कोई एक भोगी होने का बोध करता है, बस खाओ पियो मजा करो और जो भी अनुकूलता के साधन है उसको जुटाओ उसको भोगो, अनुकूलता को भोगने से आप सुखी हो जाएंगे. तो कोई एक भोगी होने का बोध करता है, तो कोई एक योगी होने का बोध करता है. एक भोग को छोड़ दो, बस अकेले मस्त रह जाओ, किसी की जरूरत नहीं, योगी हो जाओ, मैंने जंगल में सब छोड़ के चले जाओ, कोई ऐसा बोध करता है. इस दोनों में से किसके किसको सम्मत करेंगे, किसको मानना नहीं, सही कोई सही रास्ता नहीं दिखा रहे हैं. ऐसा लगता है कि भोगी होने का जो बोध करता है और कोई योगी होने का बोध करता है, मैंने त्याग करने का बोध करता है, एक पर पदार्थ को ग्रहण करने करने से सुख का बात करता है, एक कहता है कि तुम छोड़ दो तो तुम सुखी हो जाओ, किसको सम्मत करना. एलिटरेशन मिलाया है भोगी के सामने योगी को. एलिटरेशन मिलाया है, निकट के विकट ऐसे, हाँ इडर के निडर ऐसे, ऐसे एलिट्रेशन मिलता है ना, तो ऐसे एलिट्रेशन मिला है कि एक कहते कि भोगी हो जाओ तो एक कहते कि योगी हो जाओ, ऐसा दूसरी बात नहीं है. लेकिन किसको सम्मत करना, और ये दोनों किस लिए बोध करते हैं, बोध के पीछे क्या हेतु रहा है, मोटिव क्या है, आशय क्या है, दोनों किस लिए उपदेश करते हैं. और दोनों किसको बोध करते हैं, ये दूसरे को किसको बोध करते हैं, ये दूसरे को बोध करते हैं. किसकी प्रेरणा से करते हैं ये बोध देने के लिए, उसको कौन प्रेरित करता है, किसी को किसी का और किसी को किसी का उपदेश क्यों लगता है, किसी को एक का उपदेश लगता है, दूसरे को दूसरे का उपदेश लगता है, किसी को किसका लगता है, किसी को किसका लगता है, ये प्रकट देखने में आता है। किसी को योगी के बनने वाला का उपदेश अच्छा लगता है, तो किसी को भोगी बनने वाले का उपदेश भी अच्छा लगता है। विभिन्न संप्रदाय में जिसको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ वो जाता है। इसलिए कहा कि इस सब का आप निर्णय तो करो, इसलिए निर्णय कराने के लिए प्रश्न उठाया है। देखो नीचे आएगा, सब क्वेश्चन मार्क पूरा होने के बाद क्या लिखा है कि इसका निर्णय करो। फिर खुद ने निर्णय दिया कि अंतर में सुख है, बाद घूम फिर के क्या ले आए कि सुख अंतर में है। किसी को किसी का और किसी को किसी का बोध लगता है, क्यों लगता है और इसके कारण क्या है? किसकी प्रेरणा से करते हो आ गया कि उसको कौन प्रेरणा करता है उपदेश देने? हाँ, और किसको किसी का और किसको किसका उपदेश क्यों लगता है, और लगता है तो इसका कारण क्या है, और इसका साक्षी कौन है, इसका बोध लगा है या नहीं लगा है, इसका साक्षी कौन है यानी सबूत कौन है? अब कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो, ये सब प्रश्न उठाए हैं निर्णय कराने के लिए कि सही निर्णय पे आओ। ऐसे ऐसे जिज्ञासा प्रश्न का से जिज्ञासा उठाई है निर्णय पर आने के लिए। हाँ, वो विचारणा प्रबल विचारणा जगाने के लिए ऐसे ऐसे प्रश्न उठाए हैं। आप क्या चाहते हो और वह कहाँ से मिलेगा अथवा किसमें है? जो चाहते हो वो कहाँ से मिलेगा, किसमें है, वो कौन प्राप्त करेगा, उसे कौन प्राप्त करेगा, प्राप्त भी कौन करेगा, तुम करेगा या कोई दूसरा करेगा, शरीर करेगा या आत्मा करेगा, कौन प्राप्त करेगा? और कहाँ होकर लाएंगे, कहाँ होकर लाएंगे, कहाँ जाकर लाएंगे, और वो लाने का कौन सिखाएगा, लाने का भी कौन सिखाएगा, काम करने का कौन सिखाएगा, या आप अथवा आप सीख चुके हैं क्या, सीखे हुए हैं क्या, पूछते हैं कि क्या सीखे हुए हैं या कोई सिखाने सिखाएगा कोई, क्या बात है? अगर सीखे हैं तो कहां से सीखे हो, ठीक। कितने प्रश्न उठाए हैं 23 साल की उम्र में, वो प्रबल विचारधारा में कैसे कैसे प्रश्न उठाए हैं। और पुनर्वृत्ति रूप से सीखे हो, मैंने पुनः नहीं सीखना पड़े ऐसे सीखे हो, या भी सीखना फिर से भी सीखना पड़ेगा क्या? पुनः मैंने फिर से और पुनर् मैंने फिर से नहीं सीखना पड़े, इस तरह से सीखा हो, ऐसी सीख मिली है, ऐसी शिक्षा मिल गई है। अगर ऐसा नहीं तो ये शिक्षण मिथ्या ठहरेगा, फिर से सीखना पड़ेगा तो आगे सीखे हुए बात खोटी ठहरेगी, मिथ्या ठहरेगा। तो ये विचारधारा में आपको ये प्रश्न होना जरूरी है, इसमें सब कि जीवन क्या है, जीव का जीवन क्या है, और जीवन क्या है तो जीव भी क्या है, और तुम के खुद क्या है, तुम आप क्या है, और आप कुछ भी हो आपकी इच्छा अनुसार क्यों नहीं होता है, जो जो इच्छा होती है वैसा क्यों आपको नहीं मिलता है। हाँ ये उवापो होना चाहिए, ये उवापो तत्व ज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले को ये सब उवापो अंदर में चलना चाहिए। आपकी इच्छा अनुसार क्यों नहीं होता, उसे कैसे कर सकोगे, इच्छा अनुसार सब हो ऐसा कैसे कर सकोगे। बाधता प्रिय है या निराबाधता प्रिय है, मैंने आपको बाधा होवे वो प्रिय है या बाधा नहीं होवे वो प्रिय है। क्योंकि कई लोग ऐसा इच्छा है कि हम तो मुसीबत का सामना करते रहे वही हमको प्रिय है, इसके बिना जीवन में रस कैसे आएगा। तो बोले कि नहीं कोई प्रकार की बाधा हो गए वो हम पसंद नहीं करते। क्या प्रिय है आपको और वो कहाँ कहाँ और किस 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 प्रकार से है, बाधा निराबाधता, इसका निर्णय करें, इसका निर्णय करें, इन सब बातों का निर्णय करें। और फिर कहते हैं तीसरी बार के अंतर में सुख है, कहीं बाहर में सुख नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि सुख अंतर में है, ये कॉन्सेप्ट यथार्थ रूप में हो गया, ये निश्चय यथार्थ रूप में हो गया, तो अंतर में से सुख पाने के लिए प्रवृत्ति करनी होगी, बाहर में से नहीं। अंतर में सुख है बाहर में नहीं है, सत्य कहता हूं ये बात मैं सत्य कहता हूं। हे जीव भूल मत, तुझे सत्य कहता हूं, भूल मत करना, ये बात सत्य कहता हूं कि सुख अंतर में है कहीं बाहर नहीं है। विश्वास आ जाए तो बाहर में से सुख जुटाने का हमारा प्रयास बंद हो जाएगा। पूछो अंदर में देखो क्यों नहीं आता है, क्योंकि उल्टा विश्वास हमारा जाता नहीं है। बाहर में सुख है ऐसा विश्वास जम गया है। विचित्रता है, बहुत विचित्रता है, अनंत काल ऐसे गया नहीं है, वैसे अनंत काल नहीं गया है, फिर से वृत्ति उठती है सुख के लिए बाहर में, फिर से वृत्ति उठती है कि नहीं उठती है। हाँ तो इसलिए तो ये बोले कि ये तो भाई बहुत विचारधारा, गहरी विचारधारा है, मामूली बात नहीं है। सुख अंतर में है वह बाहर खोजने से नहीं मिलेगा, सुख अंतर में है वह बाहर खोजने से नहीं मिलेगा। अंतर का सुख अंतर की स्थिति में है, अंतर में स्थिर हो जाओ तो सुख अंतर में है। चंचलता से उपयोग बाहर निकला के आकुलता पैदा होगी, उपयोग बाहर गए परिणाम बाहर गए के आकुलता हुई ही हुई, तो आकुलता साथ से साथ जन्म लेती है, पैदा हो जाती है। तो कहते हैं कि अंतर का सुख अंतर की स्थिति में है, और ऐसी अंतर में स्थिति होने के लिए बाह्य पदार्थ का आश्चर्य भूल, बाह्य पदार्थ का मूल्यांकन छोड़ दे, मूल्य छोड़ दे, बाह्य पदार्थ की कोई कीमत नहीं है, आश्चर्य छोड़, मैंने महिमा छोड़, मूल्य छोड़, अधिकता छोड़, बाह्य पदार्थ की अधिकता छोड़। हाँ अंतर में स्थिति रहना बहुत विकट है। अंतर में स्थिर रहना, अंतर में डूब जाना, लीन रहना, स्थिति बहुत विकट है, क्योंकि निमित्ताधीन वृत्ति फिर पुनः पुनः चलित हो जाती है। प्रॉब्लम तो दिखाते हैं, इसका दृढ़ उपयोग रखना चाहिए, बहुत सावधानी चाहिए। अंतर में स्थिति होने के लिए बहुत सावधानी, बहुत उपयोग, बहुत जागृति होनी चाहिए। बात कहाँ आई घूम फिर के, जागृति पे आई। महिमा छोड़ दो बाह्य पदार्थ का, हाँ तो है ही। ऐसा है कि बाह्य पदार्थ की अधिकता है, बाह्य पदार्थ की अधिकता है ना, तो उपयोग तो वहीं जाएगा ही जाएगा खींच करके। जहां तक इसका मूल्यांकन है, इसकी अधिकता है अभिप्राय में, वहां तक परिणाम का खिंचाव तो रहेगा ही रहेगा। परिणाम का खिंचाव क्यों बाहर है, कि निश्चय बना रखा है, निश्चय कर रखा है कि सुख वहां है मेरा। हाँ, अभिप्राय की भूल है। सुख अंतर में है, मैं खुद ही स्वयं ही परमानंद स्वरूप हूं, ऐसा दृढ़ निश्चय नहीं है, पहचान नहीं है। दृढ़ निश्चय नहीं है मतलब पहचान नहीं है, और सुख बाहर में है, ये जो मिसकॉन्सेप्ट है वो अनादि का बहुत पक्का है। ये भूल क्या है, और इसी भूल के कारण के असंगनी हो गए। तो असंगनीपना तो ओरिएंटेड पोजीशन है उसके, जो गलती किया इसका फल है, ये बात है। इसलिए दृढ़ उपयोग रखना चाहिए, यानी बहुत जागृति रखना चाहिए। यह क्रम यथा योग्य, इस क्रम यथा योग्य निभाता चलेगा। क्या जागृति वाला, अगर जागृति सतत रही तो तुम हताश नहीं होगा, यानी तुमको अकुलाहट नहीं होगी, उलझन नहीं होगी, और निर्भय हो जाएगा, निर्भय होगा,
यानी अंदर से समाधान मिलता रहेगा।
जागृति आएगी तो जागृति के कारण से इस सब समस्या का समाधान मिलेगा, जितने भी प्रश्न उठाए ने उनका समाधान मिलेगा, और तुमको सबसे पहले निर्भयता आ जाएगी। क्यों, कि मैं त्रिकाल शाश्वत अव्यावाद स्वरूप, अव्यावाद सुख स्वरूप हूं। कैसा हूं ये निश्चय आएगा, कि मैं त्रिकाल मौजूद रहने वाला, कभी भी खत्म नहीं होने वाला, और मुझे कोई बाधा नहीं कर सके, मेरे सुख में भी बाधा नहीं कर सके, ऐसा मैं हूं, ऐसा निश्चय आएगा। तो ऐसा निश्चय होने से तुम निर्भय हो जाएगा, तुम कहीं भय नहीं होगा, क्योंकि मुझे कुछ होने वाला है ही नहीं, मैं अव्याबाध स्वरूप हूं, मुझे कोई बाधा तो पहुंचा नहीं सकता। जब बाधा नहीं पहुंचा सकता तो फिर मुझे और कुछ हो सकता है, या मेरा नाश हो सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। निर्भय हो जाएगा। हे जीव, तुम भूल मत, समय समय पर उपयोग चुक कर किसी को रंजित करने में, किसी से रंजित होने में या मन की निर्बलता के कारण तू दूसरे के पास मंद हो जाता है, ये भूल होती है, इसे न कर, ऐसे भूल तो मत कर। क्या कहता है कि तुम भूल मत, हे जीव तुम भूल मत, बार बार समय समय पर जागृति को छोड़ करके कभी तू किसी को ठीक राजी करता है या कोई तुझे राजी करता है तो तुझे अच्छा लगता है, या तुम्हारे मन की कमजोरी के कारण से, तुम्हारी कमजोरी के कारण से तुम्हारा जो जागृति है वो मंद हो जाती है, तुम्हारी मन की निर्बलता है यानी निश्चय की निर्बलता है कि तुम्हारी जागृति रहती नहीं है। ठीक प्रश्न उठा। सत्संग के लिए सब कुछ करना है, ठीक, सत्संग इसके बदले में सत्संग मिलता है तो क्या गया हम
अपना प्रतिबंध बहुत
नहीं, तो बात नहीं है, बात हमको सत्संग मिलता है कि नहीं मिलता है वो बात है। हमको प्रतिबंध क्या होता है, हमारा किसी के प्रति मोह है, लगाव है, वो प्रतिबंध है, अपनापन है, वो प्रतिबंध है। लेकिन सत्संग के लिए कुछ भी समर्पण करना पड़े तो करना, वो बात है, राजी करना मैंने, कुछ भी समर्पण करना पड़े तो करना, तो वो तो समर्पण करने की बात आई, किस लिए, सत्संग के लिए। सत्संग किस लिए, हमारे आत्म कल्याण के। अच्छा तो इस तरह से ये 108 पत्र में सुख के विषय में काफी विस्तृत विचारधारा प्रस्तुत की है और कुछ समाधान भी दिया है कि तुम जागृति रखो अपने में कि कहीं सुख के लिए मेरे परिणाम बाहर जाते हैं, उस वक्त तुम जागृत हो जाओ। मन की निर्बलता के लिए अन्य के पास क्या है कि जहाँ सुखाभास है वहाँ माँ जागृति मंद हो जाती है, तो ये भूल होती है, ये भूल जागृति होनी चाहिए, जितनी जागृति उतना काम होगा, जितनी जागृति उतना ही काम होगा, वही एक साधन है, वो जागृति ज्ञान में आती है, उपयोग कहते हैं इसको, उपयोग कहते हैं क्या, तो उपयोग रख, सावधानी रख, जागृति रख, जितनी जागृति उतना ही काम होगा, उतनी मुमुक्षुता है, जागृति नहीं है तो काम होने वाला नहीं है। नहीं, अनुभव करो, बात तो वो है कि जो उपयोग बाहर जाता है सुख के लिए, वास्तव में जीव को इसी वक्त आकुलता और दुख चालू हो जाता है, भ्रांति से सुख माना है, सुख तो वहां है नहीं, और परिणाम जो भी बाहर जाता है उस वक्त आकुलता होती ही है, और आकुलता नहीं लगती है भ्रम के कारण से, नहीं दिखती है क्योंकि मिसकॉन्सेप्ट है उस विषय में।
आकुलता को देखने का जो प्रोसेस है वो इसी प्रकार का कि वहां पर देखना है किस प्रकार का मेरे को यह सुख मैं मानता हूं।
देखो क्या होता है, देखो थोड़ा तटस्थ होकर के, मध्यस्थ होकर के अवलोकन करो तो आकुलता आकुलता रूप में दिखेगी ही दिखेगी। ये बात जरूर है कि दर्शन हो तीव्र होने से या परमे सुख की कल्पना तीव्र होने से आकुलता आकुलता दिखेगी। पहला स्टेज वेदना का क्यों लिया, आप देख लो, सोचो कि पहला ही स्टेज वेदना का क्यों लिया, तो उतना तीव्र पश्चाताप उसमें होता है कि अरे मैंने अनंत काल ये क्या किया, मेरा दुख वृद्धि का, मेरा परिभ्रमण वृद्धि का मैंने काम किया, तो उतनी वेदना आएगी वो जागृति में क्यों नहीं आएगा। जिसको उतना खेद होएगा वो जागृति में आएगा कि नहीं आएगा। बस ये जागृति को पैदा करने का मूलभूत प्रोसेस है, ये मूलभूत कारण है। ये जागृति आ गई, बस काम चालू हो गया। जितनी जागृति उतनी सफलता समझो, जितनी अजागृति उतनी निष्फलता समझो। और ये अनुभव गोचर होगा सबको, ये बात प्रत्यक्ष अनुभव गोचर होगा, अनुभव करके देख लो। दूसरा कोई सबूत देने की जरूरत या दूसरा कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं रहेगी, खुद को ही इसकी प्रतीति आ जाएगी, समझ आ जाएगा ऐसा ही हो रहा है।
दुनिया में
से
मर जाओ,
क्या नहीं मर जाओ तो भी वैसे ही मरोगे तो सोच समझ के एब्सेंट हो जाओ, ने मर जाओ मैंने एब्सेंट माइंडेड हो जाओ,
मरा हुआ है चल जाओ।
वैसे तो मूर्छित हो ही गया है, अब तो जिंदा होने की बात है, सच्चा जीवन सुखमय जीवन पैदा करने की बात है। तो ये जो वेदना वाला स्टेज है वो जागृति को पैदा करता है, प्रतिबंध को ढीला करता है और कहीं प्रकार के विपरीत अभिप्राय को ठीक कर देता है। अगर सही वेदना आई तो अनुभव करके देख लेना, अगर वो नहीं आई तो जागृति वैसे नहीं रहेगी, पुनः पुनः वृत्ति चलित हो जाएगी। क्यों, जो दुख लगना चाहिए वो दुख लगा तो दुख नहीं लगा, इसका मतलब जो भ्रांतिगत सुख है वो विषय चालू रहा है, तो फिर तो उसमें बल आएगा कहां से, पर जागृति आएगी भी कहां से, सीधी सादी बात है। हाँ वो तो क्या है कि वास्तविकता समझ में आ जाए कि अगर मैं सही रास्ता नहीं सही इलाज नहीं करूंगा तो मेरा क्या होगा, इसकी वास्तविकता समझ में आ जाए ना, तो सीधा लाइन पर आ जाएगा। वास्तविकता कितना दुख होगा उसकी वास्तविक समझ आनी चाहिए, काल्पनिक समझ नहीं। इसका मतलब क्या, काल्पनिक समझ नहीं वास्तविक समझ आनी चाहिए, ये बात है। तो भयंकर परिभ्रमण प्राप्त हो चुका है, उसमें से मुझे निकलना है। जैसे एक मकान में हम रहते हैं सारे परिवार वाले, उस मकान को चारों ओर से आग लगी, ठंड के दिन है और हम ये कल्पना करें कि चलो ठंडी कम हो गई मजा आ गई, करे तो बहुत ठंड लगती थी, अभी क्या हो गया ठंड कम हो गई, चलो अच्छा हो आराम हो गया, जल जाओगे, क्या होगा जल जाओगे। जब पता चला करे ये ठंड कम नहीं हुए चारों और आग लगी है, क्या करेगा, सबसे पहले मैं बाहर निकल जाऊ, दूसरे की पंचायत करेगा इस वक्त है कि कौन क्या कर रहा है, दूसरे को पता है कि नहीं है, दूसरा क्या कर रहा है, कोई सोता है या बैठा है या क्या कर रहा है, हाँ मालूम पड़ गया कि चारों ओर आग लगी है, कोई किसी की चिंता या पंचायत करेगा नहीं, सीधा कहाँ से कूद के बाहर निकल जाओ। ये बात सबसे पहले कितनी तीव्रता से आएगी, कितनी तीव्रता से आएगी, हाँ ये बात होनी जरूरी है, ऐसा होना जरूरी है, क्योंकि आकुलता से आकुलता की आग चारों ओर लगी है। सब आकुलता के मारे मारे दौड़ते हैं फिरते हैं, पिक्चर देख लो सबों का, आकुलता के मारे मारे भगते हैं फिरते हैं दौड़ते हैं,
पड़ता है
निकल जाओ यहां से, हो सके उतना जल्दी से जल्दी निकल जाओ। अरे भाई मानने के लिए लात खाना पड़े तो लात भी खाओ, इसमें क्या है, है?
ऐसा
समझ नहीं, पेपर में बड़ा था, पिक्चर भी देखा था, कोई यूपी में कोई बाबा है वो लात मारता है, वो क्या है एक पेड़ पे बैठता है, पेड़ पे पेड़ के डाली पे झोपड़ी बांधी है, दो चार डाली वैसी होगी अगल बगल में झोपड़ी, वहीं रहता है और नीचे अपना पैर लटकता रखता है, इनके पास जो कोई आता है उसको लात मारता है, और अच्छे अच्छे अपने बड़े बड़े नेता वो लात खाने को जाते भी है, वो फोटो दिखाया था कि फलाना फलाना मिनिस्टर लात खाने को गया। दुनिया में सब चलता है, है? तो वो कृपाल देव ने कहा कि कोई ऐसा उपदेश देता है, कोई वैसा उपदेश देता है कि तुम लात खाओ तुम्हारा भला हो जाएगा, वो लात भी खाता है वो सुख के लिए, लात खाता है तो भी सुख के लिए खाता है, तो उनको यहाँ सुख लगा, कहते हैं कि सुख अंतर में है, कहीं बाहर नहीं है, किसी से सुख मिलने वाला नहीं है, चाहे लात देने वाला मारने वाला हो या बात करने वाला, सुख अंतर में है। जो बात जो किया है ना, बहुत महत्वपूर्ण बात किया है, ये विश्व की बहुत बड़ी समस्या है, कि तो अपने को ये महापुरुषों के वचनामृत मुफ्त में मिल गए हैं इसलिए उसका मूल्य नहीं आता, ऐसे वचनामृत हैं वो मुफ्त मुफ्त में मिल गए तो मूल्य नहीं आता, लेकिन बहुत कीमती एडवाइस है, होता है ना कंसल्टेशन का चार्ज लगता है जगत में, तो नानी पालखे वाला के पास जाइए, ये तो ज्ञानी पुरुष निष्प्रभ होते हैं तो ज्ञान गंगा बहा देते हैं, बाकी इसकी कीमत बहुत है, फिर भी भले ही कुछ नहीं लगता हो लेकिन इसकी कीमत बहुत है, गंभीर उपयोग रख करके, क्या गंभीर उपयोग रख करके इस बात को अपनी भलाई के लिए उठा लेना चाहिए, वरना परिभ्रमण की खाई बहुत बड़ी ऊंडी है, बहुत ऊंडी है, वहां से निकलना मुश्किल है, ये कुएं में कोई पड़ जाता है पर चढ़ने के लिए सीढ़ी नहीं हो तो कैसे निकले, ये कुआ नहीं है ये तो खाई है अंधेरी, कोई साधन बाहर निकलने का नहीं है, ये मनुष्य भवाया है, ये दूरी मिला है, ऐसे वचन मिले हैं उसमें भी पकड़ने में हम गुजराती में क्या कहते हैं टाइला करें, भूख नहीं लगी, लगने लगते हो तो ये अच्छा नहीं बना है, वो अच्छा नहीं बना है, वो अच्छा नहीं ऐसा बना है, ये तुझे भूख नहीं लगी है, ऐसे हो जाता है। पकड़ ले बात तो पकड़ ले, वरना पीछे के दिन तो अच्छे है ही नहीं। बहुत महत्वपूर्ण बात की है, 23 साल की उम्र में कितना गहरी, कितनी गहरी विचारधारा चलती है, उपयोग प्रयोजन के विषय में उपयोग कितना गहरा है और कितना विशाल चला है और कितनी महत्वपूर्ण बात करते हैं। सुख अंतर में है, बाहर में नहीं है, वो बात 5 दफे आई है एक जगह पर, 5 दफे किया है फिर के, क्योंकि वो बात छूट जाती है जागृति में से, वो बात छूट जाती है।
सुखदा